अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
हम डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर खालिद जहीर भी यहां पर मौजूद हैं, कानून रिसालत और अजाब इलाही। मैं ये जानना चाहूंगी, हमारे नाजरीन के लिए आप ये बताइए कि क्या जब ये सारा सिलसिला, ये सारे मराहिल तय हो जाते हैं कानून रिसालत के, उसके बाद एकदम अजाब आ जाता है या पहले कोई छोटे छोटे अजाब आते हैं जो इस बात की निशानी होते हैं कि अल्लाह ताला ने अब उन लोगों के ऊपर से अपना हाथ उठा लिया है जो रसूल का इनकार करते हैं?
कुरान मजीद से मालूम होता है कि इस आखिरी अजाब से पहले तंबीही अजाब आते हैं, यानी वो अजाब जो खबरदार करते हैं, मतवज्जे करते हैं, लोगों को तवज्जो दिलाते हैं। उनसे अल्लाह ताला का मकसूद ये होता है कि लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोग लौट आए। कुरान मजीद में उन अजाबों का भी जिक्र हुआ है। उन अजाबों की नौइयत वो नहीं होती कि पूरी कौम को खत्म कर दिया जाए, ना ये होती है कि उनमें सालिहीन को अलग किया जाए, जैसे सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के इतमाम हुज्जत के बाद नेकोकार किश्ती में बैठा लिए गए और बाकी लोगों को तबाह कर दिया गया। इस तरह का मामला उनमें नहीं होता। जैसे आफतें आती हैं, जैसे जलजले आते हैं, जैसे तूफान आते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अल्लाह ताला तंबीह करते हैं।
सही,
इन तंबीहात से भी जब कौम इबरत नहीं हासिल करती तो फिर वो आखिरी अजाब आता है।
ठीक है। गांधी साहब, क्या जंगे बदर में जो एक बहुत बड़ी कमांड मक्का के लोगों की मारी गई थी, ये उनके लिए कोई तंबीही अजाब था?
ये उस अजाब की पहली किस्त थी जो कुरैश पर नाजिल किया गया। ये उस मौके पर आया है जब इतमाम हुज्जत हो चुका था, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ गए थे। कुरैश पर अब मजीद इतमाम हुज्जत की जरूरत नहीं थी। उनकी लीडरशिप, सारी की सारी लीडरशिप अल्लाह ताला के अजाब से दोचार हो गई। इसको कुरान ने वाज़ेह कर दिया है और बड़ी वजाहत और तसरी के साथ ये बता दिया है कि यह अजाब की पहली किस्त थी। ये किस्त नाजिल हो गई, उसके बाद फिर सूरह तौबा नाजिल हुई और सूरह तौबा ने बाकी लोगों के लिए भी उस अजाब का ऐलान कर दिया जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार के नतीजे में आपकी कौम के लिए मुकद्दर किया गया।
ठीक गांधी साहब, काफी टेक्निकल चीजें हैं ये। अभी हम डॉक्टर खालिद जहीर से बारी बारी हर मरहला समझ रहे थे। कुरान पाक पढ़ने से, सिर्फ तर्जुमा पढ़ लेने से या कोई भी तफसीर पढ़ लेने से एक आम आदमी के ऊपर ये कानून इतना वाजे क्यों नहीं होता?
उसकी बड़ी वजह यह है कि कुरान मजीद का हम तदब्बुर के साथ मुताला नहीं करते। आम तौर पर कुरान मजीद एक तलावत की किताब के तौर पर पढ़ा जाता है और लोग ख्याल करते हैं कि उससे सवाब हासिल हो जाएगा। इसके बाद जो तर्जुमे कुरान मजीद के किए गए हैं उनमें नज्म की पूरी रियायत नहीं की गई। यानी लोगों पर इस ख्याल का गलबा रहा कि वो लफ्ज का तर्जुमा लफ्ज के जरिए से कर दें, इससे पूरा मुद्दा वाजे नहीं होता। अब तर्जुमा करने का अंदाज तब्दील हो रहा है और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोग अब तर्जुमे में बात को वाजे करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि आइंदा ऐसे तर्जुमे हो जाएंगे जिससे एक आम आदमी भी इस पूरे कानून को समझ लेगा।
सही। मैं आपके आगे एक तिर्मिजी की रवायत पढ़ रही हूं, मैं आपसे उसकी वजाहत चाहूंगी। जब हुक्मरान तबका सरकारी माल लूटे, अमानत में खयानत की जाए, मालदार जकात ना दें, उलमाए दीन चंद सिक्कों की खातिर अपना दीन बेच दें और दुनिया के तलबगार बन जाएं, लोग अपनी बीवियों के फरमा बरदार और बापों के नाफरमान बन जाएं, लोग अपने दोस्तों से अच्छा सलूक करें और बाप के साथ बदसलूकी करें, अल्लाह के नाफरमान कबीले के सरदार बनाए जाएं, ना अहल लोगों को हुकूमत मिल जाए, लोग एक दूसरे की इज्जत करें मगर दिल में बुगज रखें, मस्जिदें लड़ाई का मरकज बन जाएं, गाने वाली और मौसीकी के आलात आम हो जाएं, शराब पी जाए, मर्द रेशम पहने, उम्मत के अगले लोग पिछले लोगों को नादान कहें, तो उस वक्त मेरी उम्मत इंतजार करे मौसम की बेरहमी का, सुर्ख आंधियों का, जलजलों का, जमीन में धंसाए जाने का और आसमान से उतरने वाले अजाब का, ताबड़तोड़ हमलों का जैसे तस्बीह के दाने टूटते हैं। कुरान में आप क्या समझते हैं कि इस कानून की जो वजाहत हम डॉक्टर खालिद जहीर से करवा रहे हैं, उस पे ये आजकल जो ये मौसम की बेरहमियां हमारे मुल्क पे हैं, क्या इसका उससे कोई ताल्लुक बनता है?
मेरा ख्याल है कि इस मामले को इस तरह नहीं देखना चाहिए, लेकिन इसकी वजाहत से पहले मैं हदीस के बारे में ये बात अर्ज कर दूं कि ये एक ज़ईफ़ हदीस है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी बात की नस्बत उसी वक्त करनी चाहिए جب ہم پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمائی ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے اور خود امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ غریب حدیث ہے اور ایک ہی طریق سے ان کو ملی ہے, اور جہاں سے ملی ہے اس میں بھی بہت کچھ کلام ہے. تو اس وجہ سے میں تو اس طرح کی روایت کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو پسند نہیں کرتا. میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات کرنا بڑی ذمہ داری کی چیز ہے, اور اس میں جب تک کوئی چیز صحت کے معیار پر پوری نہ اترتی ہو اس وقت تک اسے زبان پر نہیں لانا چاہیے.
قاندی صاحب,
کے بارے میں میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا.
جی
آپ فرمائیے.
جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ضعیف حدیث سے, یا ہم کچھ چیزوں کے بارے میں سنتے ہیں, آیات کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکی ہیں, اس سے کیا مراد ہے؟
جہاں تک آیات کا تعلق ہے وہ تو قرآن مجید میں ہوں گی. قرآن مجید نے اپنے کسی حکم میں اگر کوئی تبدیلی کی ہے اپنی حکمت کے تحت تو قرآن اس کو خود واضح کر دے گا, اس میں سے کوئی چیز دائیں بائیں نہیں ہوتی. لیکن حدیث کے معاملے میں جو محدثین ہیں وہ تحقیق کر کے ہم کو بتاتے ہیں کہ کون سی حدیث کی نسبت صحت کے ساتھ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا سکتی ہے اور کون سی حدیث کی نسبت آپ کی طرف نہیں کی جا سکتی. تو یہ محدثین اس کے ماہر ہیں اور اس فن کے ماہرین کی حیثیت سے وہ ہمیں تجزیہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت میں فلاں فلاں جگہ نقص ہے, اس وجہ سے حضور کی طرف اس کی نسبت میں احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ حدیث بالکل ضعیف حدیث ہے, اور دور حاضر میں بھی جن محدثین نے, جلیل القدر محدثین نے ترمذی پر کام کیا ہے انہوں نے یہ بات پوری وضاحت سے بیان کر دی.
بہت شکریہ جاوید احمد گاندھی صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین یہاں پر لیں گے ہم ایک مختصر سا وقفہ, سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین.